आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब काफी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सावन कुमार और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं इस बार एक नई किताब जो कक्षा 9 की है और इसका नाम है अर्थशास्त्र। प्यारे बच्चों, आपकी जो ये पुस्तक है इसका देखिए नाम ही है अर्थशास्त्र। शास्त्र का अर्थ हुआ नियम और अर्थ मतलब आप जानते हैं रुपया, पैसा, धन, है ना, इत्यादि। तो उसके नियम कि धन कैसे आता है, कैसे जाता है। उसके बाद अगर मैं इसके शीर्षक को देखूं तो पहला जो शीर्षक है आपके किताब का, जो पहला अध्याय है, उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। हम जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है, यहाँ की 60% आबादी गाँव में रहती है और अगर हम गाँवों का विकास कर दें तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि देश का भी विकास हो जाएगा। तो आइए हम एक गांव की कहानी पर चलते हैं। गांव में क्या उपलब्ध है, क्या होता है और गांव का विकास कैसे हो। आप में से बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे जो निश्चित रूप से ही इन चीजों को जानते होंगे, मगर कुछ बच्चे शहर में भी रहते होंगे। तो आइए हम एक दूसरे को जानें, क्योंकि शहर और गाँव एक दूसरे के पूरक हैं और भारत गाँव का देश है। आइए अध्याय शुरू करते हैं। पालमपुर गांव की कहानी अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु वस्त्रीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो कहानी है वो आपको काल्पनिक कहानी, मतलब ऐसा नहीं किसी गाँव का नाम भी पालमपुर है तो फिर क्यों। तो इसमें गांव की अर्थव्यवस्था बताने के लिए इसका उपयोग किया गया है कि खेती क्या मुख्य क्रिया है, तो उसके सपोर्टिव कौन कौन से हैं, कहां कहां से लोगों को आय मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी जिक्र किया गया है। आइए हम ये देखते हैं कि पालमपुर में लोग विभिन्न तरीके से कैसे आय अर्जित करते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गाँव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं अपने गाँव के आसपास, देखिए कभी आपको मोटरसाइकिल लगेगी तो, अब तो खैर बैलगाड़ियों का जमाना लद गया शायद ही हो, मगर फिर भी ट्रैक्टर दिख जाएंगे, ट्रक दिखे जाएंगे, जीप दिख जाएगी अगर सड़क पक्की हो तो। तो बता रहा है ठीक है कि पालमपुर के पास भी एक बड़ा गांव है जिसका नाम रायगंज है। देखिए कस्बा एक छोटा मोटा जगह, छोटी मोटी जगह समझे, जहाँ बाजार हो, 5-6 दुकानें हो, ये बाजार से कुछ छोटा ही होता है, तो इसे हम कस्बा कहते हैं। इस गाँव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक गांव की सी तस्वीर है, जहां ऊंची जातियां हैं तो उनके पास जमीन ज्यादा है, वो उसमें रहते भी हैं, खेती भी करते हैं। तो छोटी जातियां होती हैं, उनकी आय कम होती। अगर आप गाँव में जाएंगे तो हूबहू गाँव आपको लगभग भारत के अधिकांश गाँव ऐसे ही हैं। देखिए गाँव पिछड़ा भी नहीं है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 हाई स्कूल भी है, इसके अलावा 1 स्वास्थ्य केंद्र है और देख रहे हैं एक प्राइवेट क्लिनिक भी है, निजी औषधालय, तो वहाँ भी रोगियों को उपचार किया जाता है।
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित केंद्र है। तंत्र है, इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी तरह से पूर्ण रूप से यह आशा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और बहुत मजा आता है इसमें। आप देखिए, जो हमारे अगल बगल चीजें हैं वो किताबों में उतरी हुई हैं, तो दो तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो जो हमारे अगल बगल की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अनजानी नहीं लगती और फिर उन्हें समझने में मज़ा भी आने लगता है। तो अगर आप अपने गांव का मॉडल लागू करते तो लगभग लगभग ये इस तरह का हो ही जाता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। देखिए, एक तो कृषि क्रिया होती है ना, जिसमें सीधे सीधे खेती की जाती है। इसमें चावल उगाना, फसल उगाना, सब्जी लगाना, बागवानी करना, ये है। लेकिन गांव के सारे लोग तो ये नहीं कर सकते। कुछ मजदूरी भी करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं, कुछ आपकी बाल काट देता है। देखा आपने कि एक प्राइवेट डॉक्टर है, तो वो भी एक तरह से ऐसे ही करते हैं। अब हम आगे जब आएंगे, जो आगे के अध्याय हैं उनमें हम यही पढ़ेंगे कि ये उत्पादन कैसे करते हैं। देखिए, उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के तंत्र क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, उत्पादन मीन्स होता है कुछ बनाना, कुछ चीज़ों को उत्पादित करना, है ना। तो ये उत्पादन होता है। जैसे मान लें कि मैंने अभी एक दुकान खोली, है ना, और फैक्ट्री खोली मैंने, उसमें मैं गुड़ बना रहा हूँ, ये उत्पादन है। तो ये सब उत्पादन होते हैं। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं। प्यारे बच्चों, हम दो चीज़ें उत्पादित करते हैं, एक तो वस्तु, एक सेवा। जैसे पार्ले जी, वो वस्तु है, आप लेते हैं, खा जाते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ या आपके शिक्षक बता रहे हैं, तो क्या आपको कुछ दे रहे हैं? नहीं ना। तो जिसमें आपको कुछ ना मिले लेकिन आप उसके बदले आप पैसे देते हो, उसके बदले आप भुगतान करते हो, तो वो सेवाएं होती हैं। ये बैंक सेवा में आ गया, रिलायंस कंपनी सेवा में आ गई। ये सब क्या करते हैं? सिर्फ बात करने की अनुमति देते हैं, आपकी सेवा करते हैं और पैसे लेते हैं। तो हम दो चीज़ों का उत्पादन करते हैं, एक तो वस्तुएं और दूसरी सेवाएं। इसके लिए देखिए, चार चीज़ों का आवश्यक होना चाहिए किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए। तो वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में। जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब देखिए, अगर आप मान लें कि सॉफ्टवेयर उद्योग खोल रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, या कोई जो शिक्षक हैं, अगर वो पढ़े लिखे ना हो तो वो मजदूरी करके तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो मजदूरी करने नहीं आएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे रोजगार होते हैं, बहुत से ऐसी जगहें होती हैं फैक्ट्री वगैरह में जहाँ मजदूरों से काम चलाया जाता, तो वहाँ आपको ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत भी नहीं होती, है ना। तो उत्पादन के संगठन के लिए दो चीज़ें, पहली तो हो गई भूमि, जहाँ फैक्ट्री लगाएंगे या कुछ उत्पादित करेंगे, हवा में तब कुछ नहीं करेंगे, और दूसरा होता है श्रम। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? देखिए, भौतिक पूंजी के अंतर्गत है कि आप अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मजदूर आएंगे, हवा में हाथ हिलाएंगे और जादूगर की भांति आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी। क्या वो चीज़ें हैं? औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। देखिए, भौतिक पूंजी में पहला भाग हो गया स्थायी पूंजी। अब आपने औजार खरीदे, मशीन खरीदे, बिल्डिंग बना दी, तो ऐसा नहीं है ना कि आज मिला है और कल खत्म कर देंगे, लंबे समय तक टिके आएंगे, है ना। लंबे समय तक टिके भी चीज़ें, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? स्थायी पूंजी। यह स्थायी हो गई, बहुत दिनों तक चलेगी। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के औसत भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारें, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब मान के चलें कि प्यारे बच्चों की मुझे एक फैक्ट्री लगानी है आइसक्रीम की, तो मैं बर्फ मंगाऊंगा, पानी मंगाऊंगा, चीनी मंगाऊंगा, तो ये चीजें क्या है, मेरे पास हमेशा तो रहने वाली नहीं, क्योंकि आइसक्रीम कोई तो उपभोग करेगा, तभी तो मुझे पैसे देगा ना, है ना, उपभोग करेंगे। आप मान लें टिफिन में जाते हैं, अपने लंच में या फिर कहीं दुकान में कुछ जाते हैं, आपने 5 रुपये दिए और बिस्किट लिए, तो आपने लेके उसे खा गए, वो आप ले लो या घर चले जाए, दुकानदार के पास अब वो वस्तु नहीं रही, इसलिए उसने उसका पैसा लिया, तो कार्य हुआ ना, इसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। भवन की तरह नहीं कि बिस्कुट ठीक है भैया 5 रुपया आपने दे दिया, अब वो बिस्कुट मैंने आपको दे दिया है, जिंदगी भर खाते रहिए, 5-5 रुपया देते रहिए, ऐसा तो नहीं है। जितनी बार मैं खाऊंगा उतनी बार आपके 5-5 लोग, है ना, जितनी बार जितनी दफे आप उसे खाएंगे, कार्यशील पूंजी होती है, है ना। कच्चा माल, नकद मुद्रा हो गई, ये आप मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर काम करता है, तो ऐसा तो नहीं कि एक बार आप 300 दे दें फिर जिंदगी भर आप वो काम करते रहेगा, 300 हो गई, बिल्कुल नहीं, कोई पारस पत्थर तो नहीं है, तो आपको उसको डेली पैसा देना होगा, तो ये कार्यशील पूंजी होती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। देखिए, मानव भी एक पूंजी है। अब आपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, चीनी ले आए हैं, बर्फ है, बिल्डिंग भी है, पूंजी भी लगा चुके हैं, मशीन भी है, लेकिन कोई बनाने वाला भी तो चाहिए, अपने आप तो बनेगी नहीं, अपने आप तो बर्फ नहीं होगी कि मैं कूद जाता हूँ चीनी को कहीं तू भी आ जा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना बच्चों, तो किसी न किसी को चाहिए। और मानव जब यहाँ देखिए, मानव भी तो पूंजी है, क्योंकि पूंजी से लाभ मिल रहा है, हमने पूंजी लगाया, लाभ प्राप्त किया, उत्पादन हो रहा है ना, तो मानव भी उत्पादन में साथ दे रहा है, इसलिए वो पूंजी हो गया। चित्र में आप देख भी सकते हैं कि कारखाने में मशीन जो है, मशीनों पर वो बहुत से श्रमिक काम कर रहे हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भौतिक पूंजी है, आगे जितने भी हम पूंजी कहेंगे, और फिर क्या, उत्पादन के कारक कौन कौन से चीजें हैं जो उत्पादन के कारक करते हैं। आपने देखा ना, 4 है अभी, भूमि, मानव, फिर पूंजी और फिर श्रम, तो धीरे धीरे एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है, वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि भूमि बिल्कुल स्थिर है, मैं एक 100 मीटर का एक टुकड़ा है उसे जोतते रहूं, जो कई दिन जोतूं तो क्या होगा, वो बढ़ने वाला नहीं, वो तो सजीव नहीं है ना, कि वो बढ़ जाएगा, वो तो निर्जीव है, वो तो वहीं रहेगा, उसमें वृद्धि नहीं होगी, तो भूमि स्थिर है। अब होता क्या है कि यहाँ पालमपुर को ही देख लीजिए, तो कुछ बंजर बंजर भूमि वो होती है ना, जहाँ कुछ नहीं उपजता है, जहाँ आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, अगर कोई मैदान वैदान है तो वहाँ कुछ उपजता है बच्चों, नहीं ना, तो वो बंजर भूमि होती है, तो बंजर भूमि में कुछ नहीं उपजता, तो उसको भी लोग खेती के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आय कम हो जाती है तो सोचते हैं कि क्यों बेकार रहने दिया, लगा लो। तो उसके अलावा अब और भी कोई तरीका नहीं, अब भूमि नहीं बढ़ सकती। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यद्यपि भूमि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? देखिए बच्चों, प्यारा सा गणित है, थोड़ा सा आप तो कर ही लेंगे। आप देख लें, क्या स्कूल आपका 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है, या कितना लंबा कितना चौड़ा है, क्या उतना बड़ा है उससे कम है? तो जो 100 मीटर होता है ना, 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, यानी कि 100 × 100 10,000 मीटर स्क्वायर, तो उसे हम मान लेते हैं कि ये 1 हेक्टेयर है। गाँव में बीघा प्रचलित होता है, कट्ठा भी लोग कहते हैं, इस तरह से गांव में अलग ढंग से मापा जाता है। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा ना कि खेती में जो भूमि है वो स्थिर है, तो अब जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जनसंख्या कम तो होने वाली नहीं है, जनसंख्या को तो ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा भोजन चाहिए। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार पैदा करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि खेती कितनी चीजें हैं, एक फसल हुई नहीं दूसरी मैंने लगा दी, दूसरी नहीं हुई तीसरी लगा दी, तीसरी नहीं हुई चौथी लगा दी, तो भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। एक ही खेत से कई तरह की फसलें उगाई जा रही है, आप देख रहे हैं ना, खेत नहीं बढ़ रहा है मगर उससे कई तरह की चीजें उपजाई जा रही हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्द ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहर द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी। अब देखिए यह छोटा सा विज्ञान का एक तथ्य है, अगर पौधों को पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। अब देखिए रहट क्या होती है, तो कुएं से आपको एक चक्की लगी होती है जिसे बैल या खुद किसान घुमाता है, तो धीरे धीरे उसे पानी निकलता है, तो बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, बह रहा है पानी। तो अब जब लंबी दूरी पर आपका खेत है, धूप कड़ी है, तो आप उस पर फसल नहीं उगा पाएंगे, उतना मेहनत ही नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, धान वान जैसे कोई फसल उगाएंगे जो बारिश पर निर्भर होते हैं, या गेहूं, दो ही फसल ले पाएंगे ना। लेकिन जब नलकूप आ गए जो बिजली से चलते थे, देखिए बिजली आई तो बिजली में तो बहुत पावर होती है ना, तो पहले सरकार ने नलकूप यानी मोटर की व्यवस्था कर दी। अब मोटर बहुत ज़्यादा पानी फेंकता है, जमीन के अंदर से फेंकता है और बिजली के माध्यम से उसे चलाना भी पड़ चला दीजिए और कोई मेहनत भी नहीं करनी है और दूर दूर तक भी आप पटा सकते हैं। तो जब पानी ज़्यादा जाएगा, लोगों खेतों में पहुँचने लगेगा, तो फसल बढ़ने लगेगी। और यही हुआ, जितनी भी जुते हुए खेत थे सब पे सिंचाई होने लगी क्योंकि नलकूप आ गए, लोगों ने देखा तो लोगों ने भी अपना लिया, पहले सरकार ने किया था। भारत में सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। आप देख रहे हैं कि भारत में अभी भी कृषि किस पर वर्षा पर, बारिश आई तो ठीक है, तटीय मैदान या जहाँ नदी है वहाँ तो चलिए ठीक है किसी तरह हो भी जाता है, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे पानी मुश्किल से मिलता है वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलता है और काफ़ी मतलब खेती की अवस्था ही वहाँ सही नहीं रह पाती। 40% सोचिए, अगर 100 कट्ठा खेत हमारे पास है या 100 हेक्टेयर खेत है तो 40 हेक्टेयर खेत ही हो पाते हैं, यानी 60 हेक्टेयर खेतों की उपज ही नहीं हो पाती, इससे अनाज ज़्यादा नहीं आता है और हमारी आय भी कम रहती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने गाँव के, अगर गाँव में आप रहते हैं तो किसी किसान के पास जाएं जो प्रगतिशील हों, थोड़े बड़े हों, या फिर आप शहर में अगर रह रहे हो तो किसी सब्जी विक्रेता जो सब्जी मंडी में हो या किसी और से जाएं, तो उनसे पूछें कि कौन से किसान उन्हें सब्जी दे जाते हैं या जो भी है, तो वो आपको बताएंगे कि देखिए कुछ लोग सब्जी की खेती करते तब आपके यहाँ सब्जी पहुंच पाती है शहरों में, या गांव में आप देखेंगे कि ठीक है कि अब गेहूं कट गया है, खेत खाली है, तो क्या किया जाना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ठीक है अब गेहूं भी कट गया और
दूसरे मौसम आने में भी है, बरसात का पानी नहीं आया है, धान का सीजन नहीं आया, तो बीच में मूंग लगा देते हैं, कोई बाजरा लगा देते हैं, कोई जौ लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत तरह की फसलें भी आ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो खेत पड़ा हुआ है, जो कुछ पूंजी निर्माण नहीं कर रहा है, वो आपको कुछ पैसे देता है ना, कुछ पूंजी देता है, तो इससे आपकी आय भी बढ़ जाती है। और देखिए, काफ़ी तरह की फसलें मिली ना, बहुविध, इसी को हम बहुविध फसलें कहते हैं। मतलब ठीक है, चावल है, गेहूँ है, मुख्य फसल है, लेकिन तीसरी कोई फसल भी हम ले लेते हैं, जैसे आलू हो, ज्वार हो, बाजरा हो। तो अगर आप गांव के किसी किसान से बात करेंगे तो आपको ये बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर होता चला जाएगा। या अगर आप गांव में रहते हैं तो एक दो बार अभी अगर आप खेतों में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से खेतों में विभिन्न तरह के फसल लगे होंगे, चने होंगे या फिर कोई सब्जी लगा चुका होगा, कहीं मूंग होगी, या बीच बीच में आप कभी चना उखाड़ के खाते हैं ना खेतों में से, तो वो भी एक अलग फसल है। तो ये बहुविध फसल प्रणाली कही जाती है। आइए चर्चा करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि आपके लिए चर्चा करने की कुछ चीज़ें के लिए दी गई है, उसमें एक प्रश्न मैं आपके लिए लेता हूँ कि क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों? मुझे नहीं लगता है बच्चों का आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, हमने इस पर काफ़ी चर्चा की है और मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसका उत्तर ज़रूर दे लेंगे। उसके बाद फिर आप इधर देख ही रहे हैं कि चीज़ें हैं, जुताई क्षेत्र है, फिर उसके बाद एक ग्राफ दिया हुआ है, तो आप ग्राफ को भी देख लें, उसमें से जो चीज़ें हैं वो निम्न सारणी को भरिए। तो मुझे लगता है कि ग्राफ को आप देख के भर सकते हैं, जैसे फसल का नाम भी दिया हुआ है तो फसल का नाम देखें, उसे भर लें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ देखना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं ज़रा सा उसे आपको आगे लेके चलता हूँ। आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन उस समय क्या होता था कि जो नेचुरल बीज हैं, जो खेत में उगे हैं, उसी को ठीक अगर रख लिया गया कुछ बीज, अगले साल वही बो दिया गया, और फिर उतना उर्वरकों का, DAP, यूरिया का प्रचलन नहीं था। तो ठीक है, जो गाय का गोबर है वो खाद माना जाता है क्योंकि वो सड़ने के बाद गोबर गैस बनता है, उनके मूत्र को कीटनाशक की तरह ही प्रयोग कर लिया जाता था, या फिर आप जो राख होती थी चूल्हे की उसका उपयोग करके वो लोग खेती करते थे। तो ये सब किसानों के पास होते थे, कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता था, हल बैल से जुताई होती थी। अभी देखिए, अब हाल फिलहाल में इसको जीरो बजट किसी कहते हैं कि कुछ जीरो बजट है, मतलब बहुत शून्य बजट है, हर चीज़ किसान के पास उपलब्ध है, हल है ही, बैल है ही, गोबर है ही, तो इन चीज़ों से भी वो खेती कर सकता है, खेती में चीज़ें भी लगा सकता है। एक तरीका तो बताया गया कि एक टुकड़ा है ज़मीन का, उस पर आप कई तरह की फसल लें तो ठीक है, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, इनकम हो जाएगी। लेकिन कोई क्या और तरीका है? आइए, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक आदि के संयोजनों से ही संभव था। अब देखिए, अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो उतने ही फसल से काम चलने वाला नहीं था। या मैं आपको जैसा माल्थस का सिद्धांत बता दूं, माल्थस एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि देखिए फसल जो होती है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती है। 1 kg है तो फिर ठीक है, आप बढ़िया करेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ऐसे, और जनसंख्या 2, 4, 8, 16 इस तरह बढ़ती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ जाती, बढ़ने लगेगी तो दबाव ज़्यादा होने लगेगा, लोग ज़्यादा होंगे तो खाद्यान्न की मांग होगी, अनाज की मांग करेंगे। अब ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, तो दो उपाय हैं कि तो बहुत सा फसल उगाएं, लेकिन उससे भी बात नहीं बनने वाली है, तो दूसरी है कि उसी जमीन से अधिक फसल उगाए। तो इसको लेके हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, कहा गया कि ये बीज वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, ज़्यादा उत्पादन करेंगे। आप देखते भी होंगे कभी, आप अगर करेले के देखें, बड़े बड़े करेले होते हैं, कद्दू काफ़ी बड़े बड़े होते हैं सामान्य से, कहा भी जाता है कि ये हाइब्रिड हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा माना गया। लेकिन अब हाइब्रिड बीजों के साथ समस्या की थी क्या थी कि उनको पानी भी खूब चाहिए, वो बहुत नाजुक भी होते थे, कीटनाशक छिड़कते रहिए उन पर, उसके अलावा उनको रासायनिक खाद दीजिए, सिंचाई भी दीजिए। तो देखिए इन सबों के लिए जिनके पास नहीं था उनको पूंजी तो चाहिए थी ना, तो बिना पूंजी के संभव भी नहीं था। अब समस्या ये थी कि इसको ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगेगी, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए पूंजी कहाँ से निर्माण हो। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिनसे जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। अब देखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब तो आप जानते हैं वहाँ 5-5 नदियां बहती हैं, हरियाणा भी उधर ही है, तो इधर क्या है कि गंगा का मैदान है, सिंचाई भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी, तो सिंचाई की दिक्कत हुई नहीं अब जो उन्हें चाहिए था। दूसरी बात ये भी है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने चीज़ों को समझा, किसानों को ऋण उपलब्ध कराए, तो किसानों ने ट्रैक्टर ले लिया और भी जो मशीन थे वो ले लिए, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो इनसे उनकी फसल उपज बहुत बढ़ गई। इसलिए अभी आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में अभी भी कृषि बहुत प्रमुखता से की जाती है और बड़ी मतलब प्रोमिनेंट है, वहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा उत्पादन भी लगातार निरंतर करते रहते हैं। अब ट्रैक्टर आ गए हैं, दूसरी और भी मशीनें आ गई हैं, तो दूसरी मशीनों ने क्या किया कि फिर उत्पादन बढ़ा दिया और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन शुरू हो गया। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, HYB बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की मात्रा काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अब देखिए क्या हुआ, फसलें तो खूब आ गई, पहले 1300 आ रहा था 3200। अब देखिए बच्चों बड़ी समस्या ये होती, ठीक है मान लें कि हम 1300 हैं, अब दूसरे लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 1300 उपजा रहे थे तो कुछ बच ही जाता या सब खा रहे थे, तो अब कुछ लोग बढ़ गए तो 2600 खाने लगेंगे, है ना। अब चलिए मान लें कि हम 2600 खा भी लेते हैं तो मेरे पास 600 किलो तो बच गए, तो 600 किलो का क्या किया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा उपलब्ध होने लगी थी। इस तरह से हरित क्रांति ने निश्चित रूप से गेहूँ के उपज को काफ़ी बढ़ावा दिया। पालमपुर में देख लीजिए लगभग 2.5 गुना वृद्धि हो गई, यानी कि मतलब आप ऐसे सोचिए प्यारे बच्चों कि जहां 10 किलो गेहूं होता था 25 किलो गेहूं होने लगा, है ना, इन प्रयोगों से। अब देखिए यहाँ चर्चा करने में बच्चों आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। मुझे लगता है कि प्यारे बच्चों मैं इसके बारे में हिंट्स कर चुका हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका उत्तर आपके दिमाग में कौन गया होगा। देखिए जो प्रश्न नीचे में दिए होते हैं, अगर पढ़ने के साथ ही उनके उत्तर दिमाग में कौन जाए तो इसका अर्थ होता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं और काफ़ी अच्छे से हम उसको डील भी कर पा रहे हैं, तो ये एक आपको तरीका होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न मुझे कहना चाहिए, फिर भी मैं आपको कुछ हिंट्स के तौर पर बता दूँ कि बहुविधि फसल प्रणाली जो थी वो उसमें काफ़ी तरह के फसल उपजाए जाते हैं और उसमें उतनी पूंजी नहीं चाहिए जितनी आधुनिक विधि। अब क्या क्या पूंजी नहीं चाहिए और कैसे चाहिए, तो मुझे लगता है कि बच्चों आप इसे जान लेंगे और देख भी लेंगे। फिर देखिए सारणी दी गई है, अब दाल है और गेहूं का उत्पादन भी है, तो देखिए दालों का उत्पादन में 10 से 24 हुआ है और गेहूं इसी दौरान 10 से 97 हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दाल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा है या गेहूं का उत्पादन, किस फसल के लिए हरित क्रांति आई है, क्या दालों के लिए हरित क्रांति सफल हुई या फिर गेहूं के लिए हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि दालों में देखिए 12-13, 11-12 में, 2010-11 में 18 था, 12-13 में 18 और फिर 14-15 में तो घट गया, 17 पे पहुंच गया, लेकिन गेहूं में निरंतर प्रगति होती जा रही है, 10 से 24, 36, 55, 70, 87, 94, तो काफ़ी ज़्यादा लगभग 9 गुना बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से किसके लिए हुआ है मुझे पूर्णतः उम्मीद है काफ़ी से जानते होंगे। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि मैं एक हिंट दे दूं तो आप समझ जाएंगे, जो आधुनिक कृषि विधि अपनाएंगे उनके लिए क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि ना कार्यशील पूंजी कच्चा माल क्या हो गया, तो उर्वरक हो गए, खाद हो गए, हाइब्रिड बीज हो गए, फिर वेतन देना पड़ेगा जो आपके खेतों में काम करते हैं, मजदूरी देनी पड़ेगी, तो ये सब आपके कार्यशील पूंजी हो गए, एक्टिव कैपिटल हो गए। पहले की तुलना में कृषि को आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों? बच्चों मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसे आसानी से अपने ढंग से उत्तर देंगे। देखिए अपने ढंग से उत्तर देने से कई चीज़ें होती हैं कि आपको समझ में भी बातें आती हैं और आप जब लिखने का प्रयास करते हैं तो एक दो बार हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो, आप लिख ना पाए, तथ्य उतने अच्छे से दिमाग में आ नहीं पाए, क्या लिखना है ये आपके समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो धीरे धीरे ये भी संभव हो जाएगा। आइए मैं आपको एक चित्र दिखाऊं जहाँ पे देखिए अधिक उपज वाले बीज हैं, ट्रैक्टर हैं, आधुनिक कृषि विधि में बताया गया। तो आधुनिक कृषि विधि के अंतर्गत आप देखिए उर्वरक है, फिर अधिक उपज वाले बीज हैं, एक किसान ट्रैक्टर चला रहा है, कीटनाशक है, फिर पंप सेट, नहरें, बांध, बिजली, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आधुनिक कृषि विधियों को करने के लिए, इतनी इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए कृषि में निरंतर प्रगति हो ही रही है, अब तो लोग ड्रोन का भी प्रयोग करते हैं, कई मशीन ऐसी आ गई है जो आपके खेतों में फोटो क्लिक करके भेज दें, ऐप से खेती की जाने लगी है, जानकारी होने लगी है, और पॉली हाउस जैसे नई तरह की कई तरह की चीज़ें खेती में निरंतर प्रयोग में ली जा रही हैं, नए नए बीज भी आ रहे हैं, तो खेती अब काफ़ी आधुनिक हो रही है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे खेती आधुनिक होगी निश्चित रूप से खेती में पूंजी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप इन्वेस्ट, आप ज़्यादा लाभ कमाना चाहेंगे तो आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि वो जो ग्रीक की कहावत है ना कि जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उसी उतना ही ज़्यादा लाभ कमाओगे। प्यारे बच्चों हमने आज चर्चा की है थोड़ी सी हरित क्रांति के बारे में, पालमपुर गांव की कहानी कैसे शुरू हुई है, उत्पादन के प्रकार आपने पढ़ा चार हैं, एक तो श्रम है, फिर एक पूंजी है, एक मानव पूंजी हो जाएगा और फिर भूमि भी हो जाएगी, फिर आपने ये भी पढ़ा कि कुछ अस्थाई पूंजियाँ होती हैं, कुछ भौतिक चीज़ें होती हैं, कुछ उत्पादन हम वस्तु और सेवा का करते हैं, तो इस तरह से हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा। मैं आपसे विदा लेता हूं कि कल हम इसके आगे ज़रूर पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस मस्ती कर रहे होंगे, गर्मी ज़रूर होगी लेकिन आप इसका भी मज़ा ले रहे होंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मैं आपका दोस्त सावन आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाबा सबक है, धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।